அபாரானும் சாந்தானும் கனானும் அச்சலானும் துருவானும் நிச்சானும் புதஸ்வரூபானும் ஞானஸ்வரூபானும் ஆனந்தியானும் ஆனந்தியானும் ஆனந்த சப்தக்கு சுன்னக்கு சாத் சரீரக்கு வசதிகா ரோமாஞ்ச ஹோ ஜாதா ஹே ஓர் ஆனந்த ஜோ பரமாத்மா கா ஸ்வரூப ஹே உசி கா எக்தம் தியான ஜாஞ்சி நிச்ச ஊபர் சப்தகா ஏக் ஆனந்தியானும் பிரதீத் ஹோன லகே ஆனந்த ஜோ பரமாத்மா கா ஸ்வரூப கா தியான ஹே இஸ்கோ நிச்ச ஊபர் பாஹர் பித்தர் சப்தகா ஏக் ஆனந்த ஹி ஆனந்த கா அனுபவ கரே आनंद में परमात्मा के स्वरूप को ये ध्यान है ये बुद्धि ग्राज्यम है बुद्धि ग्राज्यम माने बुद्धि करके कर परमात्मा को स्वरूप जो ग्रहण करने में आ रहा है वो आनंद में स्वरूप है तो बुद्धि विशिष्ट परमात्मा को स्वरूप है बुद्धि से मिले हो परमात्मा को स्वरूप तो इस प्रकार से ध्यान करे हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहे जैसे गीता अध्याय 13 श्लोक 15 के मां बतलाये गए है कि बहिरंत सभूताना मचरं चरमेव च सूक्ष्म तद विज्ञेयम् दूर संचांति के तत्माने हुए ब्रह्म संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के मां परिपूर्ण है चराचर भूत प्राणियों के बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के मां समान भाव से आकाश की जो वह विज्ञान आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है कैसा वह आनंद है चिन्मय आनंद है यानी बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद तो इस प्रकार से समझे कि अपने शरीर के और नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के मां समान भाव से वह परमात्मा आनंद के रूप में मन परिपूर्ण इसी वास्ते उनको आनंदमय कहते हैं कैसा वह आनंद है कि अपने आप करके परिपूर्ण होने से उसको कहते हैं कि पूर्ण आनंद और जिसकी सीमा नहीं है इसलिए उसको कहते हैं अपार आनंद और शांति उसको स्वरूप है इस वास्ते कहते हैं कि शांत आनंद और वो खूब गहरा है इसलिए कहते हैं कि घन आनंद आनंद ही आनंद और वो कभी चलायमान नहीं रहता सदा बना रहता है इसी वास्ते उसको कहते हैं अचल आनंद और वो वास्तव के वहां है कोई कल्पना नहीं है मानी हुई बात नहीं है वास्तव के वहां है इसलिए उसको कहते हैं ध्रुव आनंद और वो सदा कायम रहता है इसी वास्ते उसको कहते हैं कि नित्य आनंद और उस आनंद का ज्ञान उस आनंद को ही है इस वास्ते ज्ञान आनंद इसीलिए उसको कहते हैं कि वो आनंद और वो सबसे श्रेष्ठ है इसलिए उसको कहते हैं परमानंद और उससे और कोई महान नहीं है इस वास्ते उसको कहते हैं महान आनंद और वो शब्द गण के वहां सम है इस वास्ते कहते हैं समानंद और वो जड़ नहीं है इस वास्ते कहते हैं उसको चेतनानंद और मन के द्वारा भी उसका चिंतन नहीं होता है इस वास्ते उसको कहते हैं अचिंतानंद बुद्धि के द्वारा ही वो समझ में आता है इस वास्ते उसको कहा बुद्धि ग्राजम केवल एक आनंद के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं इसलिए उसको कहते हैं कि उसे परमात्मा को आनंद में ऐसा परमात्मा का स्वरूप अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के बीच के मां समान भाव से थी सदा ही नित्य अस्तित्व है और वो उस आनंद का ज्ञान भी उस आनंद को ही है इस प्रकार के आनंद का अनुभव अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह हम अनुभव करें तो ये आनंदमय ब्रह्म का ध्यान है इससे प्रत्यक्ष आनंद होता है ये बात एक प्रकार से अनुभव की हुई है कि इस प्रकार का ध्यान करने से उसको प्रत्यक्ष आनंद होता है और वो उसको अनुभव होता है कि सब जगह आनंद परिपूर्ण हो रहा है और बारंबार शरीर के वहां रोमांच होते हैं और कंपा होती है आनंद से, प्रसन्नता से, और बड़ी भारी शांति मिलती है। इसी ध्यान के विषय के बीच के वहां गीता की पांचवें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वाजस प्रसे सुसक्तात्मा विंध्यतात्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय स्नुते। वाजस प्रसे सुसक्तात्मा कि बाहर के पदार्थों में जिनकी आसक्ति नहीं है उस पुरुष को कहते हैं कि बाद सपचेसु अशक्तात्मा। बाहर माने ये संसार के जितने पदार्थ हैं, सारे ब्रह्मांड के बीच के मां जितने पदार्थ हैं, इस संसारी के पदार्थों में विषयों में आसक्ति का अत्यंत अभाव जिसकी आत्मा में है उस पुरुष को कहते हैं कि वह पुरुष कैसा है कि बाद सपशेषु अशक्त आत्मा, बाहर के पदार्थों में आसक्ति रहित पुरुष है। और विंदति आत्मनीय सुखम, और जो आत्मा के मां सुख का अनुभव करता है, विंदति मन अनुभव करता है, आत्मनी माने आत्मा के अंदर, परमात्मा के अंदर। और कोई कोई ये भी इसको मानते हैं कि मन आत्मा को अर्थ अंतःकरण के बीच के मां उस परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान है, उस आनंद में ब्रह्म का जो अंतःकरण में ध्यान है, उसको भी कहते हैं कि विंदति आत्मनि यत् सुखम। यत् माने जो आत्मा के अंदर सुख है उसका अनुभव करता है। तो आत्मा सर्वस्यति हृदय भी लिया जाता है, अंतकरण भी, और परमात्मा भी लिया जाता है। तो यह परमात्मा लेना और भी अच्छा है कि परमात्मा के स्वरूप के बीच के मां जो आनंद का अनुभव करता है, यानी परमात्मा आनंदमय है, उस परमात्मा के स्वरूप का जो एक प्रकार से अनुभव करता है, परमात्मा में सुख रूप से समझो कि परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना। विंदति आत्मनि यत् सुखम, जो आनंद में परमात्मा का स्वरूप है उस आनंद में परमात्मा को आत्मा के में अनुभव करता है, माने अपनी आत्मा के बीच के में उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है। उस परमात्मा के स्वरूप में उस सुख रूप परमात्मा के शुभ का अनुभव करता है। तो आत्मनी माने परमात्मनी, यानी परमात्मा में, परमात्मा में परमात्मा का जो अनन्य स्वरूप है उस अनन्य स्वरूप का अनुभव करता है। स ब्रह्म योगी युक्त आत्मा सुख है मक्ष मश्नुति, वह ब्रह्म योगी युक्त आत्मा पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त होता है। तो अक्षय सुख का मतलब है जिस सुख का कभी खय नहीं हुए, तो वो परमात्मा का स्वरूप ही है अक्षय सुख। साधन काल का जो सुख है वो तो समझो कि घटता बढ़ता रहता है, किंतु जो सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जा रहा है, जो परमात्मा ने प्राप्त हो जा रहा है, तो परमात्मा का तो खय होता नहीं। इस वास्ते परमात्मा का जो स्वरूप है वही अक्षय सुख है, उस अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। कौन प्राप्त हो जाता है? ब्रह्म योगी युक्त आत्मा पुरुष। ब्रह्म योग माने ब्रह्म जो है परमात्मा, योग माने उस ब्रह्म के बीच के मां जो एकता। आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, उस ब्रह्म के साथ में, परमात्मा के साथ में जो जीवात्मा की एकता है, उसका नाम है ब्रह्म योग। उस ब्रह्म योग यानी उस ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी आत्मा युक्त है, माने जिसका मन उस ब्रह्म के बीच के मां समावेश हो गया है, ब्रह्म के मां जिनके मन बुद्धि एकदम प्रवेश कर गए हैं, उस सत्य सच्चिदान घन परमात्मा के मां जो प्रवेश कर गया है, एक ही भाव हो गया है उस ब्रह्म रूप ही, जिसका मन बुद्धि और उसकी आत्मा एक रूप हो गई है, यानी ब्रह्म से और कोई एक प्रकार से अलग कोई चीज नहीं रही। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी स्थिति है, अर्थात तो उस ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान होता है, और ध्यान होने के बाद के बीच के मां उसका मन जो है सो ब्रह्म तद्रूप हो जाता है, फिर उसकी बुद्धि जो है सो तद्रूप हो जाती है, और फिर वह खुद जो उस ब्रह्म के बीच के मां एक ही भाव से स्थित हो जाता है, यानी अपनी समस्त ब्रह्म में ब्रह्म रूप ही बन जाता है। ऐसे पुरुष को कहा गया है कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा, तो वह पुरुष जो है फिर उस ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म वित्त ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म देता है तो ब्रह्म ही बन जाता है। तो आनंद में ब्रह्म का ध्यान करने का ये फल होता है। फल क्या होता है कि वो फिर ब्रह्म ही बन जाता है, आनंद में ही बन जाता है, और फिर वो समझो कि आनंद में बनने के बाद उसे आनंद का ही सदा अनुभव करता है, यानी एक प्रकार से अनुभव करता है, ये कहना भी नहीं बनता। ब्रह्म को तो अपने आप का सदा से ज्ञान है ही, बस वो एक प्रकार से थी ब्रह्म ही बन जाता है, परमात्मा ही बन जाता है। यही साधन गीता की 36 अध्याय के 21 और 22 के श्लोक में बतलाया गया है। सुखमातंतिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतिन्द्रियं येति यत्र न चैवायं स्थितस्तल्ति तत्र तः। सुखमातंतिकं यत्तद्, जो अत्यंत सुख है, जिसका कोई अंत नहीं है, माने वह आनंद में ब्रह्म, बुद्धि ग्राह्यम माने बुद्धि से ग्रहण करने में आता है, अतिंद्रियम माने इंद्रिया की वहां पहुंच नहीं है, यत तथ माने यत माने जो ब्रह्म सुख रूप है, कैसा सुख है कि अत्यंत सुख है, वह सुख बुद्धि से समझ में आता है और इंद्रिया की वहां पहुंच नहीं, मन भी इंद्रियों के शामिल है, इस वास्ते मन की भी वहां पहुंच नहीं। व्यति यत्र यत्र माने जिस काल के मां साधक उस परमात्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव करता है, जो अत्यंत सुख है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं है, ऐसे सुख का जिस काल के मां ये साधक अनुभव करता है, फिर उस स्थिति ये विचलित नहीं होता। जब वास्तव के मां उस परमात्मा के स्वरूप का इस साधक को अनुभव हो जाता है, यानी परमात्मा को ये प्राप्त हो जाता है, साधन करते करते उस परमात्मा के स्वरूप में जब तन्मय हो जाता है, फिर उस परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, यानी उस परमात्मा के स्वरूप में सदा के वास्ते उसकी स्थिति हो जाती है। उसकी कैसी स्थिति रहती है वो आगे के श्लोक में बताया जाता है। परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा, जिस परमात्मा को पाकर, जिस विज्ञानं घन परमात्मा को पाकर, उससे अपर मन उससे और दूसरा जिस परमात्मा को, जिस आनंद में परमात्मा को पाकर उससे भर करके और दूसरा कोई सुख नहीं समझता है, दूसरा और उससे भरकर कोई आनंद को नहीं अनुभव करता है। यंगलव द्वारा परम लाभम मनते नाधिकम तथा, जिस विज्ञानानुगम परमात्मा को पाकर के उससे भर करके और कुछ भी उससे बढ़कर आनंद नहीं मानता है, जिस आनंद में परमात्मा को पाकर उसे परमात्मा से बढ़कर और आनंद का अनुभव नहीं करता है यानी आनंद को नहीं मानता है। इसमें स्थित होने दुखे ने और जिस आनंद में स्थित हुआ भारी दुखों के द्वारा भी विचलित नहीं होता है, भारी दुखों के द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर बड़ी बड़ी आपत्तियां आकर के प्राप्त होती है किंतु वो परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता है, न स्वतः विचलित होता है और न दुखों के द्वारा विचलित किया जा सकता है। तो ये समझना चाहिए कि वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है यानी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद के मां उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप से ये कभी विचलित होता नहीं और किसी भी प्रकार से विचलित दूसरे के द्वारा किया जा सकता नहीं, सदा उस परमात्मा के स्वरूप के वहीं एसोसिएट रहता है। तो ये उसकी कसौटी है। एक तो ये कसौटी है कि उस पूर्ण आनंद को प्राप्त होकर के उससे बढ़ करके और भी कोई आनंद है ये इसकी भावना नष्ट हो जाती है, यानी उसको और कोई आनंद है ये एक प्रकार से भाव नहीं रहता। एक परमात्मा से बढ़ करके और कोई वस्तु है ये जो एक प्रकार से भाव नहीं होता। संसार के वहां जितने जो मनुष्य हैं या कोई भी है वे सभी आनंद को चाहते हैं और आनंद की भूख लगी रहती है किंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद के बीच के वहां और आनंद की इच्छा नहीं रहती, उससे बढ़कर और कोई भी आनंद है ये उसके हृदय में भाव ऐसा नहीं होता। और दूसरी यह उसकी परीक्षा है कि उसके मन पर बुद्धि पर शरीर के ऊपर भारी से भारी आपत्तियां आकर के प्राप्त हुए या उसको आग में झोंक दिया जा या उसको शस्त्र से काटा जा, उसके शरीर को शस्त्र से काटा जा या संसार के मां बड़ी भारी आपत्ति आकर के प्राप्त हुए तो भी वो अपने उस परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, उसी में नित्य स्थित रहता है। उस आनंद में परमात्मा में स्थित होकर के वो खुद आनंद में ही बन जाता है। इसके लिए हम लोगों को हर वक्त उसे आनंद में परमात्मा के मन मग्न रहना चाहिए। जैसे बताया यो अंतर सुख अंतराराम है तथा अंतर ज्योति रेवी है स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो दिगच्छति। जो अंत माने आत्मा, आत्मा में ही जो सुख वाला है यानी उस परमात्मा का जो स्वरूप आनंद में है उस आनंद में परमात्मा को ही अनुभव करने वाला है, हर वक्त उस परमात्मा को ही अनुभव करता रहता है। बाहर के पदार्थों के बीच के मां सुख का अपंत अभाव है इस बात को समझ करके जो ब्रह्म जो परमात्मा है वही सबकी आत्मा है, इस वास्ते उस परमात्मा ने माने उसे आत्म स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। उसको कहते हैं कि अंत सुख, अंत माने उस परमात्मा में आत्मा में सुख अनुभव करने वाला अंतराराम है। बारंबार उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप की जो आवृत्ति करता रहता है कि जैसे पूर्ण आनंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्य आनंद बुद्ध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, इस प्रकार से थी उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप की आवृत्ति करता रहता है यानी उस परमात्मा के स्वरूप का मनन करता रहता है, उसको कहते हैं कि आत्माराम, उसको कहते हैं कि अंतराराम है। अंत माने आत्मा के बीच के मां आराम करने वाला, आत्मा के बीच के मां विचरने वाला, आत्मा का मनन करने वाला, आत्मा के मां रमने वाला, तो यही उस परमात्मा के स्वरूप में रमण है। उस परमात्मा के स्वरूप का ही बार बार जो अनुभव है उसी को बार बार समझो कि मनन करता रहता है, उसको कहते हैं अंतराराम है। और अंत ज्योति, अंत माने आत्मा, तो आत्मा के मत ज्योति वाला, आत्मा या ना परमात्मा, परमात्मा मत ज्योति वाला का यह मतलब है कि परमात्मा को ही ज्योति रूप से देखता रहता है, यानी परमात्मा जो है सो चेतन है, वह जो आनंद है सो चिन्मय है, उस आनंद में परमात्मा को चेतन स्वरूप से ज्ञान स्वरूप से अनुभव करता रहता है, उसको कहते हैं अंत ज्योति। अंत माने परमात्मा, परमात्मा में ज्योति वाला, यानी ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, या ज्योति माने चिन्मय ज्योति, जग ज्योति नहीं, तो परमात्मा जो है सो ज्योति स्वरूप है, यानी वे आनंद में परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, उस आनंद में ब्रह्म को विज्ञान रूप में देखता रहता है, उसको कहते हैं कि अंत ज्योति। से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदि गच्छति, वह ब्रह्म भूत योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म भूत योगी, ब्रह्म भूत योगी क्या, ब्रह्म जो विज्ञानानुगन परमात्मा है, उस विज्ञानानुगन परमात्मा के स्वरूप में जो तन्मय हो गया है, यानी मैं विज्ञानानुगन परमात्मा हूँ इस प्रकार का अनुभव करता है, ब्रह्म भूत माने ब्रह्म स्वरूप, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप देख रहा है, यानी उसको ये प्रत्यक्ष की माफक अनुभव हो रहा है कि मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, माने उस ब्रह्म के बीच के मां इतना तन्मय हो गया कि उसको ऐसा प्रतीत होने लग गया कि मानो वो विज्ञानानुगन परमात्मा मैं हूँ, इस प्रकार से थी। जब उसको अनुभव एकदम प्रत्यक्ष की भांति होने लगता है, उसको कहते हैं कि ब्रह्म भूत, ऐसा ब्रह्म भूत योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी वास्तव के बीच के मां जो निर्विशेष ब्रह्म का जो स्वरूप है, सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म, जिसकी व्याख्या की गई है कि वह ब्रह्म जो है सो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप और महान, और ऐसा वो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, उसे वास्तव में उसे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पहले तो साधन करता है, वो अपनी दृष्टि से अपने आप को ब्रह्म रूप में देखता है, और फिर वास्तव के बीच के मां वो असली जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, साधन का जो फल स्वरूप जो है, जिसको अमृत के नाम से कहा गया है, जिसको विज्ञानानुगन ब्रह्म के नाम से कहा गया है, उसी का नाम यहाँ निर्वाण ब्रह्म है, माने शांतिमय ब्रह्म, यानी शांत स्वरूप, एक प्रकार से शांति ही जिसको स्वरूप है, ऐसा जो शांतिमय जो ब्रह्म है, उस विज्ञानानुगन ब्रह्म को या निर्वाण ब्रह्म के नाम से कहा गया, उसी ब्रह्म को एक प्रकार से अमृत के नाम से कहा गया गीता की 13वीं अध्याय के 12 के श्लोक में, गेयं यत तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्तुते, जो जानने के योग है उसे ब्रह्म को मैं तेरे लिए कहूंगा कि जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो साधन काल के बीच के मां जो जानने में ब्रह्म का स्वरूप आता है, अपनी बुद्धि से जो ग्रहण करने में आता है, जिसको बुद्धि ग्राह्यम कहा है, वह जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसका फल है एक प्रकार से अमृत की प्राप्ति। तो अमृत के नाम से भी यहाँ उस विज्ञानानुगन ब्रह्म को ही कहा गया है। तो साधन काल के मां जो ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव होता है, वो बुद्धि ग्राह्य, उसको एक प्रकार से थी जानने के योग कहा गया है, और उसका जो फल है, जहाँ वाणी नहीं पहुंच सकती, जहाँ मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है, उसका नाम यहाँ अमृत कहा गया है। तो गेयं यत तत्पर वक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्तुते अनादि मत परं ब्रह्म न तत्पन्ना सदुच्यते, वो अनादि है, इसी को परम ब्रह्म कहा गया है।